الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. نکاح و طلاق، رضاعت اور عدت کے مسائل چل رہے ہیں. نکاح تو سب جانتے ہیں، طلاق بھی سب جانتے ہیں. رضاعت یعنی دودھ پلانے کے مسائل، کہ دودھ پلانا کس کا حق ہے، والدہ نہیں پلا سکتے تو بچے کے لیے دودھ پلانے کا نظم کرنا، کوئی پلائے تو اس کی اجرت یا اس کی جو معاوضہ رہیں گا وہ دینا کس کی ذمہ داری رہے گی، یہ سارے مسائل اور کچھ عدت کے مسائل. آگے جو آیت آئی ہے اس کا تعلق بھی عدت کے احکام سے ہے. عدت کہتے ہیں طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو انتظار کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہوتا ہے نکاح ثانی کرنے سے، اور کچھ پابندیاں کرنا ہوتا ہے ایک مدت تک. تو وہ جو ٹائم لیمٹ ہے، اس ٹائم لیمٹ میں نکاح نہیں کرنے کی جو پابندی ہے، اور زینت وغیرہ اختیار نہیں کرنے کی، سجنے سنورنے کی اجازت نہیں رہتی اس میں، تو وہ جو پابندی ہے اس پابندی کو فالو کرنے، مینٹین کرنے کا نام عدت کہلاتا ہے اس ٹائم کے اندر. تو سب سے پہلے یہاں پر یہ دو ہوتی ہے، ایک عدت طلاق کی ہوتی ہے اور ایک عدت وفات کی ہوتی ہے. طلاق کے بعد طلاق عورت ہو گئی، وہ اس کی عدت وفات یعنی شوہر کے مرنے پر جو پابندی ہوتی ہے. وہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن عورتوں کو اس حکم کی پابندی کرنا ہے، کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ نکاح نہیں کر سکتے، دوسرا اگلا نکاح، اور ان دنوں تک وہ سج سنور نہیں سکتے، بغیر ضرورت گھر سے باہر نہیں جا سکتے، بالخصوص رات کسی اور جگہ نہیں گزار سکتے. یہ مدت ختم ہو گئی، اس کے بعد میں دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو اختیار ہے، اور اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ان کے لیے بھی گناہ کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے بھی گناہ کی بات نہیں ہے. تمہارے لیے سے مراد ہوتا ہے ان عورتوں کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، جو ان کے نکاح کرانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں وغیرہ، یہ اس قسم کا تعلق جن کا ہوتا ہے مردوں میں سے، وہ اس کے مخاطب ہیں. تو یہ عورتیں نکاح کریں تو تمہارے لیے گناہ کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر عدت میں وہ نکاح کرنے بیٹھ جائیں یا عدت میں نکاح کرنا چاہیں، جو کہ اللہ کی طرف سے اجازت جس کی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو روکو گے نہیں تو پھر تمہارے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ تم ذمہ دار ہو ان کے نکاح کے. اگر غلط طریقے سے وہ نکاح کر رہے ہیں کہ اس ٹائم میں وہ نکاح نہیں کر سکتے اور وہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تمہارا کام ہوگا ان کو روکنا. ہاں، یہ ٹائم گزر گیا، پھر اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اب کوئی چونکہ شرعی پابندی نہیں ہے، لہذا تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہاں سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے، نہیں عن المنکر والا، کہ اگر کوئی کام برا ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ اس پر روکنے کی استطاعت قدرت بھی رکھتا ہے، اس کو بدلنے چینج کرنے کی، تو اس کو بول کر یا اس کو ہاتھ سے روک کر یا دل سے برا سمجھ کر اس کو چینج کرنا، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے یا اس کا برا سمجھنا ضروری ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو ذمہ داری جو برائی کر رہا اس پر ہی نہیں ہوگی، جو روک سکتا لیکن نہیں روک رہا اس پر بھی ذمہ داری آئے گی، یعنی وہ بھی برائی کرنے میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا. ارے انہوں ظلم کرے، میں تو نہیں کرانا، ظلم انہوں کرے، تم روک سکتے تھے، ظلم سے نہیں روکے، اس لیے تم بھی ظالم، یہ مطلب ہے اس کا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جن لوگوں کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسهن 4 اشہر و 10 شہر، ان خواتین کو انتظار کرنا ہوگا اور روکے رکھنا ہوگا اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن. کس چیز سے روکنا ہے؟ نکاح سے، اور عدت کے اندر جو پابندیاں ہوتی ہیں، سرما لگانے کی، اچھے کپڑے پہننے کی، بغیر ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی، ہاتھوں پیروں میں مہندی لگانے کی، یہ پابندی نہیں لگا، یہ چیزیں نہیں کر سکتے. ان چیزوں سے رکنے کو یتربصن، اپنے آپ کو روکنا بولا جا رہا. 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن جو ہے یہ اس وقت ہوں گے جب کہ شوہر کا انتقال ہوا ہو چاند رات کو. تو ہر مہینہ چاند رات کو انتقال ہوا تو پہلا مہینہ دوسرا مہینہ کاؤنٹ کرنا آسان ہے، لیکن اگر درمیان چاند رات کے علاوہ کسی اور تاریخ میں اگر انتقال ہوا ہے شوہر کا، تو پھر تھوڑا نزاکت ہے اس میں. اب اس مہینے کے یہ دن کاؤنٹ کر لیں گے، اگلے مہینے چاند رات سے حساب کر کے وہ 3 مہینے یا 4 مہینے کر کے ادھر سے جوڑ جاڑ کے 4 مہینے 10 دن کر لیں گے، ویسا نہیں ہے. اس وقت پھر حساب 130 دن کا بنتا. اگر شوہر کا انتقال چاند رات کو ہوا ہے تو 4 مہینے کا حساب چاند سے ہوگا، 29 دن کا مہینہ سمجھا جائے گا، जिस दिन, जिस महीना, जो भी महीना 29 दिन का होगा। लेकिन अगर चांद रात को इंतकाल नहीं हुआ तो फिर इद्दत 4 महीने 10 दिन 130 दिन होगी टोटल। ये तो इस मसले में बहुत सारे लोगों को थोड़ा इल्म नहीं रहता, अक्सर थोड़ी गलती कर जाते, वो महीनों से हिसाब कर लेते, चांद से हिसाब कर लेते, चाहे शोहर का इंतकाल चांद रात को हुआ हो या कभी भी हुआ हो। फ़ैदा बलगना अजलहुन्ना, जब वो अपनी मियाद को पहुंच जाएं, ख़वातीन यानी उनकी जो भी मुद्दत है 4 महीने 10 दिन, चांद से वो जितनी भी बने या चांद के अलावा से 130 दिन, फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना बिलमारूफ, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं उसके बाद वो जो भी करें अपने हक में, यानी निकाह वगैरह, बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह ताला को तुम्हारे सब कामों की खबर है कि वो औरतें क्या कर रही हैं और तुम क्या कर रहे हो। अगर वो ठीक कर रही हो तो तुम खामखा ठीक करने से रोक रहे हो, निकाह नहीं करने रोक रहे हैं या निकाह नहीं कर सकते तुम दूसरा, या अगर वो इद्दत में निकाह करने बैठ जाए और तुम रोक सकते हो तो उनको रोक नहीं रहे, तो तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह सब देख रहे हैं, अल्लाह को सब पता है तुम्हारे कामों का। उसके बाद एक और हुक्म है कि कोई औरत अगर इद्दत में है, चाहे वो इद्दत तलाक हो या इद्दत वफात हो, तो अब मर्दों को हुक्म है, अगर तुम्हारा उन मुतल्लका ख़वातीन से निकाह का इरादा है तो उनसे सराहतन निकाह का जिक्र नहीं करना, साफ लफ्ज़ों में क्लियरली कि मेरा आपसे निकाह का इरादा है, इद्दत के बाद मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, नहीं बोल सकते, इजाज़ जायज़ नहीं है। निकाह भी नहीं कर सकते, निकाह करूँगा बोल के भी नहीं बोल सकते, वला ताज़िम उक़दतन निकाह, दिल में पुख्ता इरादा भी नहीं कर सकते। तीन हुक्म आ रहे इसमें, एक एक निकाह कर लिए किसी से इद्दत में, हराम है, मैं आपसे निकाह करूंगा इद्दत गुजरी बात सराहतन ऐसा बोलना यह भी जायज़ नहीं है, ना तो निकाह कर रहे ना सराहतन बोल रहे, लेकिन दिल में सोचे हुए करके रहूंगा निकाह इद्दत गुजरी बात, ये करके रहूंगा पुख्ता इरादे को बताने के लिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जिस इरादे में भी पुख्तगी पाई जाती है, अल्लाह फरमा रहे ये भी नहीं करना है। फिर इशारे किनारे में कोई पैगाम पहुंचाना है, जैसे मेरा भी, मैं भी निकाह के लिए रिश्ते देख रहा हूँ, इस किस्म की बात उन तक पहुंचा दिए, उनसे जिक्र कर दिए, ताकि अगर उनका इद्दत गुजरने के बाद इनकी तरफ रुझान हो तो वो फिर बात आगे चल सके, ऐसा इशारे किनाये में बातचीत करने की इजाज़त है। अब इशारे किनाये के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सराहत का एक ही रास्ता है कि उसको पता चल जाए कि यह आदमी मुझको बोल रहा है कि मुझ में इंटरेस्टेड है और ये निकाह करना चाह रहा है मुझसे, तो निकाह की भी इजाज़त नहीं है इद्दत में, निकाह करने के वादे या इरादे को जाहिर करने की भी इजाज़त नहीं है, मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है, और दिल दिल में पुख्ता इरादा कर रही, पुख्ता इरादा करने की भी इजाज़त नहीं है। हक ताला इसमें एक जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, हमें पता है, अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह को पता है कि तुम ज़रूर उनका जिक्र करोगे, जिससे ताल्लुक़ हो जाता बहाने बहाने से आदमी उसका जिक्र ज़बान पर लाता। तो अगर किसी खातून के ताल्लुक से जिसकी तलाक हो गई, जिसके शौहर की वफात हो गई, जो इद्दत के अंदर है, किसी को उनसे ताल्लुक हो गया, तो अब उनके वास्ते ये तीन पाबंदियां हैं, ना निकाह, ना सराहतन इरादा निकाह का इजहार, और ना ही दिल के अंदर उनसे निकाह का पुख्ता इरादा। हाँ, इरादा कर सकते, मैं सोच रहा हूँ, सोचते हैं अगर अल्लाह ने किस्मत में लिखा है तो इनसे निकाह करेंगे, ये है गैर पुख्ता इरादा, मैं भी रिश्ते देख रहा हूँ, ये है इशारे किनाये के अंदर उन तक बात का पहुँचा देना, पैगाम निकाह का पहुँचा देना। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसा औ अकननतुम फी अनफुसिकुम, इस बारे में भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम औरतों का को पैगाम निकाह दो इशारे में किनाये में, औ अकननतुम फी अनफुसिकुम, या दिल में छुपाए रखो इस बात को कि अगर किस्मत में हुआ तो इनसे निकाह करेंगे। अलीम अल्लाह अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह ताला को पता है कि तुम ज़रूर अन करीब इसका जिक्र करोगे, उनका ख़वातीन का जिक्र करोगे, यानी उनसे निकाह में दिलचस्पी होने का। वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन, लेकिन ये ताकीदी हुक्म है कि उनसे निकाह का वादा मत करो, इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा, हाँ इसकी इजाज़त है कि तुम कोई भली बात कह दो, भली बात से मुराद इशारे किनाये में पैगाम निकाह पहुँचा देना। वला ताज़िमु उक़दतन निकाह, निकाह के अक़्द का पुख्ता इरादा मत करो, अक़्द निकाह का पुख्ता इरादा मत करो, हत्ता यबलुगल किताबु अजला, जब तक के इद्दत अपने इख्तिताम और मियाद को न पहुँच जाए। वअलमु अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रू, ये इस्लाम की और अल्लाह की तरफ से जो किताब उतारी जा सकती उसी की खासियत हो सकती है, ये जुमला है। वो आलम हो, जान लो ये बात। अब इसमें जो हुक्म आया उसका ताल्लुक दिल से भी है ना, दिल के उमूर से कौन वाकिफ हो सकता? हुकूमत कहाँ से बोलेगी कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, हमको पता है। दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी लॉ पाया जाता है, कानून पाया जाता है, कानून की किताब, कानून की दफात पाई जाती हैं, शिकें पाई जाती हैं, दिल से मुतालिक कहीं भी नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि इरादे जुर्म, जुर्म का इरादा कोई कर रहा, सोच रहा, तो उस पर उसको उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, जुर्म पे सज़ा देंगे, इरादे जुर्म पे सज़ा नहीं है। दुनिया वालों के पास क्यों, उनकी उनका उनकी रसाई दिल तक है च नहीं, इस वास्ते देंगे किस बात पे सज़ा? पता कैसे चलेगा कि फुला ने फुला इरादा किया था? अटेम्प्ट पे तो देते हैं, इंटेंशन पे नहीं देते। अल्लाह ताला का मसला है, यालमु माफी अनफुसिकुम, तुम्हारी इंटेंशन का भी पता है मेरे को, क्योंकि हुक्म दिया ना अल्लाह ताजी मुकद्दतन निकाह, पुख्ता इरादा नहीं करना, देख रहा हूं मैं तुम्हारे दिल में पुख्ता इरादा है कि ना पुख्ता है। वालमु, जान लो इस बात को कि अल्लाह ताला जानते हैं, माफी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिल में है। फहजरू, लिहाजा डरो अल्लाह से, कहीं पुख्ता इरादा नहीं कर लेना, कहीं निकाह इद्दत में नहीं कर लेना, कहीं सराहतन औरतों से निकाह का पैगाम नहीं भेज देना। इद्दत की बात हो रही है, इद्दत के अलावा की बात नहीं हो रही है, जहन में रखिएगा। वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, और ये बात भी जान लो कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले, बहुत बुर्दबार हैं। क्या मतलब है? अभी अभी तो कहा जा रहा था कि अल्लाह देख रहे हैं, डरो अल्लाह से, अभी कहा जा रहा है कि अल्लाह बख्शने वाले हैं, बुर्दबार हैं। बख्शने वाले हैं का मतलब ख़ता हो गई तो माफ़ी मिल जाएगी, बुर्दबार हैं का मतलब फौरी सज़ा नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सज़ा देने पर कुदरत नहीं है, नहीं। गलती से गुनाह तुमसे हो गया है तो गफूरन, माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि वो गफूर है। अब तक चूंकि हुक्म नहीं मालूम था इसलिए कर बैठे हो ऐसा कुछ, तो पकड़ नहीं होगी, क्योंकि गफूर है वो। हलीम, जानने के बावजूद अब हुक्म हम बता दिए, फिर भी तुम पिछले एक बार करा था, सज़ा नहीं मिली, लिहाजा अभी भी कर लूंगा, इस बार बच जाऊंगा, इससे पहले भी नहीं नहीं, नहीं, नहीं मिली थी ना सज़ा। हलीम, मैं सज़ा नहीं दे रहा हूँ का मतलब ये नहीं है कि मेरे को सज़ा देने पर कुदरत नहीं है। हलीम, मैं बुर्दुबार हूँ, फौरी नहीं देता, हिकमत मसलहत के साथ चलता हूँ, ये मतलब है उसका। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक्तुम निसा, अहकाम जो रहते हैं ना, हुक्म कानून ला जो रहता है, ये टॉपिक थोड़ा सा ड्राई रहता, फ्रूट नहीं रहता, इन्हें जूसी नहीं रहता, थोड़ा अहकाम का जो मजमून टॉपिक रहता ये ड्राई रहता, ड्राई फ्रूट नहीं रहता इन्हें। लेकिन हालात जानते हुए दुनिया के, अल्लाह ताला के इन कवानीन को पढ़ो तो इसमें से जो जूस निकलता ना, जहन को जो जूस मिलता वो मादी जूस से ज़्यादा मज़ा देता। जो लोग खुदा ना खास्ता इन हालात में घिरे हुए हैं, हो कोई घिरा हुआ हो इन हालात में, इन मसाइल में, और फिर दुनिया के अंदर जो कवानीन बने हुए हैं उन कवानीन की वजह से उस पर जो जुल्म हो रहा, उस जुल्म को वो झेल रहा हो, फिर वो कुरान पढ़े तो उसको सूरह रहमान में वो मज़ा नहीं आता जो उस हुक्म में आता। तो ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक्तुम निसा मा लम तमस्सुहुन्न, यहाँ पर भी महर के कुछ अहकाम का बयान हो रहा है। निकाह के बाद अगर तलाक हो जाती है तो ये इसकी दो सूरतें हैं, या तो मियाँ बीवी की यकजाई, विदाई, रुखसती और मिलाप हो चुका है या नहीं हुआ है, ये दो सूरतें। फिर ये दो चीज़ों से कनेक्ट होते कि औरत का महर मुतय्यन हुआ था निकाह से पहले या नहीं हुआ था, तो इस तरह ये टोटल चार सूरतें बन जाती। महर मुतय्यन हो गया कि मिसाल के तौर पे $1,000, $10,000 जो भी है, फिर उसके बाद मियाँ बीवी यकजा हो गए तो पूरा महर वाजिब हो जाता। दूसरी सूरत, महर तो मुतय्यन था लेकिन निकाह हुआ, यकजाई नहीं हुई, यकजाई से पहले तलाक हो गई, तो ऐसी सूरत में आधा महर जो मुतय्यन करे थे उसका आधा महर वाजिब होता। ये दो सूरतें हो गई। एक तीसरी सूरत है, महर मुतय्यन नहीं हुआ और तलाक हो गई, निकाह तो हुआ, निकाह होकर तलाक हो गई और यकजाई हुई थी, मियाँ बीवी का मिलाप हुआ था, महर मुतय्यन नहीं था, तो ऐसी सूरत में महरे मिसल देते हैं। महरे मिसल किसको कहते हैं? उस खातून के ख़ानदान में उसके फूफू का, उसके बहन का, उसको इनका जो महर रहा है वो महर दिया जाता है उसको, उसके करीब करीब या वो सेम, उसको महरे मिसल बोलते हैं। अगर उसके कोई रिश्तेदार नहीं है तो उस जैसी काबिलियत वाली खवातीन का जो मेहर आमतौर से रखा जाता है वो मेहर मिसल कहलाता है। ये तीन सूरतें हो गई। चौथी सूरत यह है कि मेहर भी तय नहीं हुआ और निकाह होने के बाद में मियाँ बीवी की यकजाई भी नहीं हुई, तो फिर ऐसी सूरत में सिर्फ मता मिलेगा औरत को। मैं मता का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इसके लिए फिकह में मुताह का लफ्ज़ आता, ये मुताह से फिर किसी और मुताह की तरफ नहीं चले जाना बल्कि मता का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। कुरान ने भी उसको मता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मत्तिउहुन्ना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि हर आदमी उसको खर्चा दे। अब ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा, तो ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा तो जिस कदर बुरा हो सकता बुरा करके छोड़ दो, नहीं, ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा ठीक है तो भी उसको सलीके से ख़त्म करना है, जैसे बोले वैसे नहीं, खाली जज्बातीत के साथ नहीं, खाली गुस्से के इजहार के साथ नहीं। तलाकन औरत को बिल्कुल नंग धड़ंग, यानी जिस हालत में भी वो है उस हालत में बगैर उसके लिहाज मुरुवत अखलाक से पेश आए बगैर, ऐसा नहीं। मैं जरा उसको भी रुख्सत करना है सलीके से करेंगे, तो उसको मता दो। इसकी क्या मकदार है? फरमाया अलल मुसी कदर हो, हर आदमी की हैसियत के मुताबिक उसको हदिया दो, उसको गिफ्ट दो। और ये गिफ्ट इस सूरत में, जो चौथी सूरत है ना, इस सूरत में ये गिफ्ट वाजिब रहता क्योंकि महर तो है नहीं, लिहाजा कुछ ना कुछ देना है, तो ये गिफ्ट इस सूरत में वाजिब हो जाता। मालदार आदमी अपने हिसाब से दे और गरीब आदमी अपने हिसाब से दे। क्या क्या क्या, क्या हिसाब रखें उसके अंदर? तो उसके लिए हमारे पास बुजुर्गान दीन के वाकयात हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आपको एक ऐसे अहवाल पेश आ गए थे कि आपको एक अपनी बीवी को तलाक देना पड़ गया था, तो उन्होंने 20,000 दिरहम मता दिया था। काजी शुरह एक काजी गुजरे हैं, उन्होंने उनके साथ ये पेश आया था, तो उन्होंने 500 दिरहम ये उनको दिए थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु तर्जमानुल कुरान है, वो कुरान के दरसे कुरान के सबसे बड़े उस्ताद दुनिया के, रहती दुनिया तक के वास्ते जो सबसे बड़े मुफस्सिर हैं वो हैं इब्ने अब्बास साहबा हैं। तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मता की कम से कम मकदार जो एक आदमी को देना चाहिए वो एक जोड़ा कपड़ा है, एक जोड़ा गिफ्ट कर देना। ये हुक्म बयान हुआ है इस आयत। ये जो चार सूरतें बताई गई हैं ये सारी सूरतें इस आयत में नहीं हैं, सिर्फ जो लास्ट सूरत है ना वो सूरत उसके और उससे पहले वाली सूरत इसमें बयान हुई। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक्तुमुन निसा, इस बारे में तुम पर कोई हरज नहीं है अगर तुमने तलाक दे दी हो औरतों को। मालम तमस्सुहुन्ना, जबकि अभी नौबत भी नहीं आई थी उनसे यकजाई की। औ तफरिजु लहुन्ना फरीजा, या जबकि अभी महर भी उनके लिए तुमने मुतय्यन नहीं किया था और उससे पहले ही तलाक हो गई। तो वमत्तिउहुन्ना, अब क्या करना है? उनको मता दो। अब मता की तशरीह में जैसा बताया गया, खर्चा देना, नफका देना और ये देना, इसकी कोई लिमिट किसी की तरफ से तय नहीं हुई। अलल मूसी कदरहु, मालदार आदमी के जिम्मे हैं, मालदार जितना वो मालदार है उस हिसाब से। वअलल मुक्तिरी कदरहु, नादार आदमी जो गरीब है उसके जिम्मे हैं उसकी अपनी इस्तेआत के हिसाब से। मताअम बिलमारूफ, लेकिन ऐसा भी नहीं होना कि गरीब लोगों में, गरीब तबके में तलाक हुई तो गरीबा जितना देते उतना देना, उसे कम दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते ना। मालदार आदमी तलाक हुआ के घर में तलाक हो गई तो उन्होंने गरीबों वाला दे रहे, नहीं। मताअम बिलमारूफ, मारूफ का लिहाज रहना। हक्कन अलल मुहसिनीन, ये नेक लोगों के जिम्मे ज़रूरी है, लाजिम है ये नेकी करने वालों के जिम्मे। व इन तल्लक्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सुहुन्ना, दूसरी सूरत, और अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है इससे पहले कि तुम, मिन क़ब्ल अन तमस्सुहुन्ना, तुम्हें उनके साथ यकजाई की नौबत आई हो। वक़द फ़र्ज़ तुम लहुन्ना फरीज़ा, लेकिन तुमने महर मुतय्यन कर लिया था। फ़निस्फ़ु मा फ़र्ज़ तुम, तो जितना तुमने तय किया था उसका आधा देना होगा, यकजाई नहीं हुई तो भी। इल्ला अन याफ़ूना, अल्लाहु अकबर, इल्ला ये कि वो ख़वातीन माफ़ कर दें कि वो आधा भी ना लें। औ याफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या वो बंदा माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गुंडी है, निकाह की गांठ है, गिरा है, शोहर शोहर के पास है ना। क्या मतलब है इसका? अरबों में एक रवाज था कि निकाह से पहले ही अपनी बीवियों को, रुख्सती से पहले ही मेहर अदा कर दिया करते थे। तो अब अगर तलाक होती थी और ये सूरत वाली तलाक हुई कि यकजाई की नौबत नहीं आई लेकिन महर मुतय्यन हो चुका है तो आधा महर देना है। तो ऐसी सूरत में औरत आधा रख करके आधा वापस कर रही है तो हक ताला फरमा रहे हैं औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, जिसके हाथ में निकाह की गिरा है यानी शौहर, वो खुद माफ़ कर दे, नहीं आधे की भी ज़रूरत नहीं। व अन तअफू अक़रबु लित्तक़्वा, और ये बात कि तुम माफ़ कर दो ये तकवे से करीब तर बात है। वला तनसबुल फ़ज़्ल बैनकुम, आपस में एहसान करने को नज़रअंदाज मत करो, आपस में एहसान करने को ऐसे मौक़ों से भी। ला तनसौ, नज़रअंदाज इग्नोर मत करो। इन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, यकीनन इसमें कोई शक ही नहीं है कि तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह सब देख रहे हैं। हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलाति अलवुस्ता, ध्यान में रखो या पाबंदी करो तमाम नमाजों की। वस्सलाति अलवुस्ता बिलखसूस दरमियानी नमाज की। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के सामने खड़े रहो अदब के साथ में। देखिए मुआशरत, निकाह के, तलाक़ के, रज़ात के, इद्दत के, ये जो मसाइल है ना, महर के, ये मसाइल का ताल्लुक मुआशरत से हो गया। मुआशरत के अहकाम बयान होते 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 एकदम नमाज की तरफ आ गए। हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता क्या मतलब है? जितना अहम मुआशरत है दीन में उतना ही अहम इबादत है। मुसलमानों में क्या हो गया, इबादत अहम है, मुआशरत की अहमियत नहीं है। मकसूद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना इताअत में, चाहे वो उसकी शक्ल इबादत की बने चाहे उसकी शक्ल मुआशरत की बने। अब दूसरे और अहकाम आप आगे चले जाएंगे तो वो आगे वाले अहकाम हो सकते हैं, मामलात के हों, लेन देन के हों, कारोबार के हों, बिजनेस तजारत के हों। तो जितनी अहमियत इबादत की है उतनी ही अहमियत मुआशरत की है, फ़र्क नहीं है। लोगों ने ये फ़र्क को भुला दिया है तो लोगों के सामने दीन क्या हो गया, दीन सिर्फ इबादत का नाम हो गया। फिर जब इबादत उनकी नज़र में सिर्फ दीन सिर्फ इबादत हो गया तो फिर उसकी उसके जाहिर करने की वो लोग ज़रूरत नहीं समझते और वो लोग उसको ये मान के चलते कि तुम्हारा और तुम्हारे रब का मामला है ये, लिहाजा ये घर में होना चाहिए बाहर नहीं। दीन को जो मुआशर मतलब ये कि जिस दीन में मुआशरत भी दीन का हिस्सा होगा फिर वहाँ पे सिर्फ घर तक दिल की हद तक मामला नहीं रह जाता। ये बहुत गहरी बात है। यहाँ पर क्या है कि हर आदमी का मजहब उसका अपना ज़ाती हक बोल के छोड़ दिया जाता, ये बात अपनी जगह तस्लीम की जाती है कि हर आदमी का मजहब उसका अपना ज़ाती हक है, लेकिन उसके इजहार की जो इजाज़त नहीं होती है ना, वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके मजहब में मुआशरत नहीं है, उनके मजहब में सियासत नहीं है, उनके मजहब में मामलात नहीं है, यानी वो उन चीज़ों को मजहबी हैसियत हासिल नहीं है, उनके पास उस बारे में उस चैप्टर में कोई तालीमात नहीं है, उनको सबका नहीं मिले हुए हैं, हमको तो मिले हुए हैं। तो हम जो भी करेंगे हमारी सियासत होगी उसमें भी दीन होगा, हमारी मुआशरत होगी उसमें भी दीन होगा, हमारे मामलात होंगे उसमें भी दीन होगा, और इबादत तो है ही दीन, अल्लाह से जो ताल्लुक़ है वो दीन ही। नमाज पढ़ो, बोलने के बीवियों को मेहर अदा करो, इनको तलाक देनी, ये सूरत हो गई तो ये करो ये करो ये करो, इनको पैसे दो उनको पैसे दो, नमाज पढ़ो, पैसे दो नमाज पढ़ो। पैसे दे रहे थे अल्लाह का हुक्म समझ के, नमाज पढ़ रहे अल्लाह का हुक्म समझ के, वहाँ पर भी नज़र में अल्लाह थे यहाँ पर भी नज़र में अल्लाह है, ये मतलब है। हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, तमाम नमाजों की का ध्यान रखो, बिलखसूस बीच की नमाज, दरमियानी नमाज। दरमियानी नमाज से कौन सी नमाज मुराद है? पांच नमाजों में से हर नमाज को दरमियानी बोल सकते हैं क्योंकि उसके इस तरफ दो नमाजें उस तरफ दो नमाजें होंगे। फजर को पकड़ लें तो उससे पहले मगरिब ईशा और बाद में जहर असर, जहर को पकड़ लें तो ईशा फजर और बाद में असर मगरिब, तो हर नमाज की गुंजाइश निकलती है इसमें। इसलिए बाज़ लोगों ने कहा है कि अस्सलातिल वुस्ता हक ताला हर नमाज की ताकीद करना चाह रहे, पहले बोले पांच नमाजों की रियायत करो ध्यान रखो, बोले हर नमाज का ध्यान रखो, इस अंदाज से बोले ताकीद के लिए। लेकिन बाज़ दूसरे अक्सर मुफस्सिरीन जो फरमाते हैं कि इससे असर की नमाज मुराद है। अरे भाई असर की नमाज क्यों? इसलिए कि आम तौर से तवज्जो वहाँ दिलाई जाती जहाँ गफलत हो जाती, ज़रा देख के जाना वहाँ स्टेप है, आप सीधा सीधा चल रहे यहाँ से वहाँ जा रहे तो नहीं बोलते, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा उभार आ गया, हम्प आ गया, स्टेप आ गया तो बोले ज़रा देख के। तो हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, ये जो असर का वक्त है ना, ये खेल में, कारोबार में, दूसरे मामलात में थकन से चूर होके घर को आ गए, सो गए, निकाल दिए। यहाँ पे क्या होता, अब हर आदमी के एज लेवल एज के हिसाब से भी होता है। अब बच्चे हैं तो खेल में गंवा देते, बड़ा आदमी तिजारत बिजनेसमैन है तो वो तिजारत में चले जाती, जॉब वाला आदमी है तो थकन में चले जाती। वस्सलातिल वुस्ता, औरतें हैं तो उनको पकवान है उसमें चले जाता, बच्चों का ध्यान है उसमें चले जाता, नहीं असर की ध्यान असर को खास तौर से जहन में रखो। हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा फजर को और असर फजर की नमाज और असर की नमाज की पाबंदी करता है, हक ताला उसकी मगफरत फरमा देंगे। क्योंकि इस वक्त में फरिश्तों की ड्यूटियां हैं, लगी हुई हैं, दिन के फरिश्ते रात के फरिश्ते जो होते हैं ना, वो असर और फजर में तब्दील होते हैं। ये लोग देखते हैं कि एक बंदा फजर में आया, फजर वाले देखे कि फजर में आया, असर वाले देखे असर में आया, और दोनों जमा हो रहे हैं, दोनों जमा हो रहे हैं दोनों ड्यूटियों के वक्त में। नमाज पढ़ के जाते वो लोग, अभी नमाज पढ़े वगैरह नहीं जाते, लगा मस्जिद को आते, मसाइल पूछते, सर्टिफिकेट लेते, काउंसलिंग के केसा करा लेते, नमाज होती बस दफा उससे महरूमी हो जाती। फरिश्ते जो आते जो ड्यूटियों पे रहे वो ड्यूटी भी अंजाम देते और नमाज पढ़ के जाते। तो वो जो फरिश्ते हैं फजर के, उनको फजर के फरिश्ते जो आए हैं असर तक रहने के लिए, जो रात से थे अभी तक असर से फजर तक, वो भी देखते हैं। फिर उसके बाद दोनों फरिश्ते फिर देखे कि असर में भी बंदा है, तो उनकी गवाही में बंदा आ जाता, ये फरमाते हैं उलमा हिकमत में, फजर और असर पढ़ने वाला। अल्लाह ताला सब के लिए आसान फरमाए। वकूमु लिल्लाहि कानितीन, और खड़े रहो अल्लाह के सामने अदब से। अदब से खड़े होना क्या है? अदब से खड़े होना यही है कि भाई अल्लाह का ध्यान रहे कि हम अल्लाह के सामने, रब्बुल आलमीन के सामने, अहकमुल हाकिमीन के सामने हैं, उसी अल्लाह के सामने हैं जिसके सामने एक दिन खड़े होना है। नंग धड़ंगे, बदन पे चीथड़ा नहीं होगा, उस हालत में खड़े होना है। आमाल का पलंदा साथ होगा, अच्छे बुरे सब आमाल का, उस हालत में खड़े होना है। बातचीत वो करेंगे, अल्लाह ताला सवाल करेंगे, उस हालत में। हदीस शरीफ में आता, इब्ने आदम की टांगे भीगी हुई बकरी के टांगों की तरह कांप रही होंगी जब अल्लाह से बात कर रहा होगा। जब अल्लाह उससे बात करें, बंदा क्या बात करेगा? जब अल्लाह उससे बात करेंगे, और ये कदम उसके हटेंगे नहीं, ला यज़ालु क़दम इब्ने आदम, हटेंगे नहीं। ये सवाल तो हर एक से होने वाला है। यौम यकूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन सारे लोग अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, खड़े होंगे। वकूमु लिल्लाहि क़ानितीन, तो इस ख्याल इस्तेहज़ार और ध्यान के साथ में जो खड़े हों वो है अदब से खड़े होना। इससे पहले यानी इस आयत के नुज़ूल से पहले नमाज में बातचीत की इजाज़त थी, आके पूछे अरे कितने रकात हो गए, एक रकात हो गई, दो हो गई थी, इजाज़त थी। ये आने के बाद में फिर वो चीज़ें रुक गई हैं, मनसूख हो गई हैं। शुरू में जब मजहब की क्या बोलेंगे शुरुआत होती है, तो उस वक्त में कुछ सहूलतें भी रहती, कुछ मुश्किलात भी रहती। सहूलतें बहुत थोड़ी रहती, ऐसे चीज़ें देख के हंसता कि अरे बड़े मज़े में थे। नहीं भाई, उन लोगों ने जिन मुश्किलात में नमाज़ें पढ़ी है ना, ज़िंदगी में हमारे एक भी वैसी नहीं रहती। फ़ैन ख़िफ़ तुम फरीजा लेना रुकबाना, नमाज इतनी अहम चीज़ है, इतनी अहम इबादत है, और अल्लाह को ये मतलूब है बंदों से हर हाल में। अगर तुमको दुश्मन का खौफ है, नमाज माफ़ है क्या? नहीं, तुम जिस हालत में हो उस हालत में पढ़ो, ये हुक्म है। फरिजालन, अगर तुम एक जगह खड़े हुए सब बांध के खड़े हुए तो सब बांधे बांधे पढ़ो, और अगर तुम घोड़ों पर सवार हो तो सवार हुए हुए पढ़ो, प्लेन में जा रहे हमला करने के वास्ते या दिफा करने के वास्ते पढ़ो। अरे उस हालत में कैसा पढ़ेंगे? उस हालत में पढ़ो, अगर रुकू सजदे के साथ रेगुलर जैसी नमाज पढ़ते वैसा पढ़ सकते तो वैसा पढ़ो। अब घोड़े पर सवार रहते तो वैसी थी नमाज तो हो नहीं सकती, तो उस इशारे से पढ़ो, ये मतलब है उसका। इशारे से पढ़ना क्या है? इशारे से यही है कि थोड़ी सी तख़फीफ उसमें हो जाती। क़याम है, अब घोड़े पे बैठे हैं तो खड़े तो नहीं हो सकते, तो जो बैठा हुआ है उसके अंदर ही जो हाथ बांधेगा तो वो क़याम बन जाएगा, हाथ छोड़ेगा तो तशहुद हो जाएगा। रुकू सजदा रह गया तो थोड़ा सा झुकेगा रुकू हो गया, थोड़ा ज़्यादा झुक गया सजदा हो गया, बस इतनी सी बात। कुर्सी पर बैठने वाले जैसी नमाज पढ़ते हैं वो नमाज मुराद है। तो हमारे बहुत सारे लोग आजकल घुड़सवारी फरमा रहे हैं। फ़ाइन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना, अगर तुमको डर हो, डर से मुराद दुश्मन का खौफ है, तुम्हारी जंग चल रही है और मैदान जंग में तुम हो, या मैदान जंग में ना भी हो लेकिन अंदेशा है कि तुम पे वो हमलावर होने वाला है, तो फ़रिजालन, तो खड़े होने की हालत में तुम नमाज अदा करो। औ रुकबाना, या सवार होने की हालत में नमाज अदा करो। फ़ैदा अमिन तुम, जब तुम बेखौफ हो जाओ, अब दुश्मन का खौफ नहीं है, फ़ज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मालम तकूनु तालमून, तो अल्लाह को याद करो यानी नमाज पढ़ो उस अंदाज से जिस अंदाज से नमाज पढ़ना अल्लाह ने तुमको सिखाया, यानी रेगुलर नमाज पढ़ना, वो रुख्सत मिली थी तो वो उस हालत के लिए है, बाद में उसको कंटिन्यू नहीं करने का है। कमा अल्लमकुम मालम तकूनु तालमून, देखो ये जो अल्लाह ने सिखाया है ना कि मुझे ऐसा पूजना है, قیام ایسا ہے، اس میں تلاوت ہے، تسبیح یہ ہے، رکوع ایسا کرنا، اس میں یہ پڑھنا، سب رکوع سے اٹھنا، پھر سجدے میں جانا، سجدہ رکوع کی طرح ایک نہیں دو کرنا، دو سجدوں میں پھر میرے سے دعا مانگنا، پھر میرے سامنے بیٹھ کے میرے ساتھ سرگوشی کرنا، پھر جب نماز باندھے تھے، نماز شروع کرے تھے تو اللہ اکبر بول کے ساری چیزوں کو بھول کے پیچھے اللہ اکبر، ساری چیزوں کو چھوڑ لو، میں دنیا سے دنیا ساری کو، خیالات کو، ہر چیز کو پیچھے پھینک کے آئے تھے، تو وہ میرے تک دھیان رہنا، پھر جب یہاں سے جانا چاہتے ہو میرے دربار سے تو پھر السلام علیکم کر کے ادب کے ساتھ میں رخصت ہونا۔ تو یہ معلم تکون و تعلمون، یہ کیسا خوبصورت انداز میں نے سکھایا ہے، یہ تم کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، تو یہ جو سکھایا ہے اسی انداز کو آئندہ فالو کرنا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، زمانۂ جاہلیت میں عورتوں کے جو حقوق مارے جاتے تھے اسلام سے پہلے، ان کو جو دبا کے رکھا جاتا تھا، ان پر ظلم کی جو حالت تھی وہ سب کو پتہ ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا اس کی عدت ایک سال سمجھی جاتی تھی، اسلام نے تو بتایا کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، تو ایسا دکھتا کہ وہ لوگ ظالم تھے، وہ لوگ ایک سال دے رہے، اسلام بڑا انصاف پسند بن کے آیا، یہ 4 مہینے 10 دن دے رہا۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مسئلہ تھا، اس میں ان کو ایک رخصت دی گئی تھی، وہ کیا؟ زمانۂ جاہلیت میں ایک سال تک عدت ہے، تو اس ایک سال تک کی عدت میں سے اسلامی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن پورے ایک سال ہونے تک شوہر کی وفات سے شوہر کے مال میں سے اس کے رہنے کا، اس کے کھانے پینے کا نظم کیا جائے گا، تم اس کو زبردستی شوہر کے گھر سے نہیں نکال سکتے اور کھانے پینے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے اور اس کا خرچہ نہیں روک سکتے۔ ہاں اگر یہ خود چھوڑ کے چلی جائے اور اپنا نکاح کہیں اور کرنا چاہے، یا اپنے آپ کو مستغنی ظاہر کرے کہ نہیں میں 4 مہینے 10 دن ہو گئے اور اس کے بعد اب میں خرچہ نہیں لینا چاہ رہی، تو پھر ان کی مرضی ہے، لیکن تم اپنے سے ان کا خرچہ باندھ روک نہیں سکتے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، وہ یہ کہ شریعت میں جب تک احکام میراث نہیں اتارے گئے تھے نا، کہ مرنے والے کے کون سے رشتہ دار کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کس کو ملے گا اور کتنا ملے گا کی جو تفصیلات ہیں، وہ جب تک نہیں اتارے گئے تھے تو اس وقت ایک چیز فرض کی گئی تھی، یعنی زمانۂ جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ مرنے والے کا کس کو کیا ملتا، وصیت کے پر ڈیپینڈ تھی ساری چیزیں، یا تو ظلم ہو جاتا تھا یا تو وصیت کے حساب سے چلتا تھا۔ شریعت نے بھی کہا، ہم پڑھ کے آئے ہیں پارے 2 کے اندر شروع میں، کہ کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الوصیہ، جب کوئی مرنے لگے تو وصیت کرنا ضروری ہے۔ وہ کون سی صورت میں ضروری ہے؟ چونکہ پہلے تھا، احکام میراث اترے نہیں تھے، اب مرنے والے کا مال کسی نہ کسی کو تو ملنا ہے، تو اس کو بولا جا رہا کہ اللہ تم کو آخر میں جو سمجھ بوجھ دے دیتا ہے کہ اب تم دنیا سے جانے والے ہو، اس سوج سے کام لے کر کے تم اپنے مال کی تقسیم کر دو، کہ فلاں مال اس کو دے دو، فلاں مال اتنا مال اس کو، اتنا مال اس کو دے دو، یہ کہہ دیا گیا تھا۔ تو وہ جو وصیت کی بنیاد پر مسائل چلتے تھے، ان حالات کو ذہن میں رکھ کے اس چیز کو دیکھیں، کیونکہ ابھی بیوی کا حصہ متعین نہیں تھا اور وصیت کے ذریعے سے والدین کو کا حق کو دینا تھا، اپنے مال میں سے حصہ دینا تھا، تو پھر بیوی کو کیا ملے گا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا وہ جو اس کا حصہ بنتا ہے عدت میں سے دلاتے ہیں، ایک سال تک اس کے گھر میں رہنے کا حق اس کو دلاتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا خرچ اس کے مال میں سے نکلواتے ہیں، یہ ترتیب ہے۔ پھر جب آیت میراث اتر گئی کہ اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ مل رہا شوہر کی مال میں سے، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو جتنا بھی حصہ مل رہا ہے اس کا 1/4 حصہ مل رہا ہے، وہ جو 1/4 اور 8واں حصہ ہے وہ اب مل گیا ہے، تو اب صرف 4 مہینے 10 دن تک شوہر کے مال میں سے اس کو خرچہ دیا جائے گا، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد اب کچھ اور اس کا حق نہیں بنتا ہے، میراث میں سے اس کو حصہ ملے گا جو بھی، تو اب وہ وہاں سے خرچہ کر لے۔ تو جب تک اس کا حق نہیں تھا تو ایک سال تک کی رعایت تھی، جب اس کا حق بن گیا تو عدت صرف 4 مہینے 10 دن ہو گئی اور اس کا خرچہ ہو گیا اور یہ سلسلہ ہو گیا۔ تو یہ جو پہلے حکم تھا، اس پہلے حکم کو کا تلاوتن ذکر ہے، یعنی یہ والی آیت بعد میں آئی، وہ والی آیت پہلے ہے۔ علماء سے بے نیاز ہو کے چلیں گے، یا تفسیروں کو یا بڑوں کی باتوں کو دھیان نہیں دیں گے، قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی جو کوششیں آج کل چل رہی ہیں وہ کریں گے، تو پھر آج کی عدت ایک سال ہو جائے گی، آج کل عورت کی عدت ایک سال ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے آئی تھی تو وہ کینسل ہو جائے گی، اور یہ جو ہے بعد میں آ رہی ہے تو یہ پھر امپلیمنٹ کے قابل ہو جائے گی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، ان کے ذمے ضروری ہے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا کہ ایک سال تک ان کو متاع دینا ہے گھر سے نکالے بغیر۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود چلی جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ جو کچھ اپنے حق میں کرے معروف کے مطابق۔ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला गलबे वाले हैं और अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं। हिकमत है इसलिए ये अहकाम दे रहे हैं। मतलब तुमको इसकी रीज़निंग नहीं समझ में आ रही तो ये समझ लो कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा है, तुम में समझने की काबिलियत सलाहियत कम है। मैं कितना कुछ समझ लूँगा या जो मेरे साथ हो रहा है मैं उसको कितना कुछ जान पा रहा हूँ, जान पा रही हूँ, जो मुझे हर चीज़ समझ में आने लगेगी। तो हकीम, अल्लाह ताला की हिकमत से तुम्हारे जहन का क्या मुकाबला, कुछ भी नहीं। अज़ीज़ुन, अल्लाह ताला गलबे वाले हैं, क्या मतलब है, चाहते तो इससे सख्त अहकाम का तुमको पाबंद कर सकते थे, नहीं करे, और तुम अगर खिलाफ वर्जी करोगे तो उनकी गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकोगे। वलिल मुतल्लका मताउ बिल मारूफ, सारे ही तलाक याफ्ता खवातीन को मारूफ के मुताबिक मता मिलना चाहिए। हक्कन अलल मुत्तकीन, जो कि हक है मुत्तकियों के ऊपर, मुत्तकियों से मुराद ईमान वाले। देखिए, एक इससे पहले जिक्र आया था कि चार सूरतें औरतों की हैं तलाक और मेहर की तायिन और अदम तायिन के लिहाज से। उन चार सूरतों में से एक सूरत में जबकि तलाक हो जाए, मेहर मुतायिन न हो और यकजाई भी नहीं हुई थी, तो उस सूरत में मता का देना वाजिब था और ज़रूरी था। बाकी तीन को मेहर मिल रहा है, किसी को पूरा, किसी को आधा, किसी को कुछ, तो फिर उनको कुछ देने की ज़रूरत, मज़ीद अलग से देने की ज़रूरी नहीं है। लेकिन वलील मुतल्लकाती मताउ बिलमारूफ से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस एक खातून को छोड़कर बाकी तीन का भी हक इससे साबित होता है, लेकिन एक खातून का हक वजूब के दर्जे में है कि ज़रूरी है, उसको देना ही देना होगा। और जो बाकी तीन खवातीन हैं जिनको महर वगैरह मिल रहा है, उनको भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलना चाहिए, ये मतलब है वलील मुतल्लकाती मताउ बिलमारूफ। बाज़ हज़रात ने मताम से वो इद्दत के दरमियान जो खर्च मिलता है वो मुराद लिया है। याद रखिए कि कुरान में जो मता का लफ्ज़ आता है, यहाँ वाला जो कानून में मेंटेनेंस होता है ना, वो मेंटेनेंस नहीं होता, ये मता। मता कुरान ने इस्तेमाल किया है लफ्ज़, तो फिर इसकी तशरीह भी अहादीस में बयान कर दी गई है कि कितने दिन होगा। ये कुरान में भी आया है, वल मुतल्लकात यतरब्बस न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरू, उनके सिर्फ सलासत कुरू है, तीन महीने हैं उनके, तीन सर्कल्स हैं उनकी, तीन साइकिल्स हैं उनकी, जो जिनको माहवारी आती है और जिनकी तलाक हुई है, जिनकी वफ़ात हुई उनका बता दिया 4 महीने 10 दिन। तो ये मेंटेनेंस ज़िंदगी भर जो चलने वाले किस्से है, ये इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है और कुरान के लफ्ज़ मता का इसमें उसकी तरफ कोई इशारा नहीं है। जाहिल लोग भी तफसीर करते हैं, तो इंडिया के अंदर ये जो मेंटेनेंस है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो हुकूमत ने मुसलमानों को जो कहा कि अगर कोई मुसलमान हुकूमत से रुजू करता है अपने निकाह तलाक के मसले से, तो फिर उसके पर्सनल लॉ के लिहाज से उसको किसका पाबंद करेंगे, तो वह जाहिलों की तफसीर उठा लेके वो लोग मता से मेंटेनेंस निकाल लिए। अब वहाँ पे शोहरों को मेंटेनेंस का पाबंद कर दिया। अगर कोई औरत जाके हुकूमत से रुजू होती है तो फिर वो उसको मेंटेनेंस का पाबंद कर देते हैं। अरे भाई, मता कुरान में जो बोले, अरे कहाँ है कुरान में? कुरान में जहाँ पर यह आया वहाँ पर यह भी तो आया कि 3 महीने तक है, फिर दिलाते सिर्फ 3 महीने तक। अगर शोहर का इंतकाल हो गया तो उसके माल में से 4 महीने 10 दिन तक का हिस्सा है, आधी प्रॉपर्टी थोड़ी देने दिलाने का हिस्सा है। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के ज़िम्मे एक हक है। मुत्तकियों से मुराद है मुसलमान। क्यों? इसलिए कि हर मुसलमान के दिल में अल्लाह की अजमत को लेकर इतना खौफ तो होगा कि इस हुक्म को वो पूरा करेगा। कदालिक युबग्गिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। देखो, ये निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, इद्दत के मसाइल, महर के मसाइल, उसके अंदर मुताए की नज़ाकतें कि गिफ्ट देना, फ़लाँ सूरत में देना ज़रूरी, फ़लाँ में देना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन दिए तो अच्छा है, रियायत से मुरुवत से चलो, ये सारे अहकाम अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ से काम लो, यानी अगर तुम ये काम करते हो तो अल्लाह को क्या मिल रहा? अल्लाह ताला को तो कुछ भी नहीं है, फ़ायदा किसका है? हमारी खातिर है। तो फिर लअल्लकुम ताक़िलून, समझ से काम लो। ये अहकाम का जो नहज है, अंदाज़ है, एक बात जहन में रखने की है कि ये अल्लाह ताला इन्नल्लाह बिमा तअमलूना खबीर, इन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, हक्कन अलल मुत्तकीन, हक्कन अलल मुहसिनीन, अलल मौसी कदरु व अलल मुक्तरी कदरु। ये एक वज़न है अरबी, जो हजरात जानते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि इन आयात के अंदर, इन अहकाम के अंदर, इन हिदायात के अंदर एक वज़न है। ख़ासकर हुक्म देने के बाद अल्लाह ताला जो बोलते हैं, देख रहा हूँ मैं तुम लोग क्या करते, मुझे सब पता है तुम क्या क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हो। ये जो आयात रहती है ना, ये आयात इसका अंदाज़ बता रही हैं कि ये मशवरे नहीं होते, ये हुक्म है, ये एडवाइस नहीं होती, ये लॉ है, ये ऑर्डर है। ये तो मुसलमानों को इसको ऑर्डर और लॉ की हैसियत से लेना है, एडवाइस की हैसियत से नहीं, मशवरे की हैसियत से नहीं। हक़ ताला हम सबों को कुरान का फहम नसीब फरमाए हकीकी माना में, रमज़ान से पहले का ये आखिरी दर्स था, इंशाल्लाह फिर रमज़ान के बाद दर्स होगा।